प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास डॉक्टर जयशंकर मिश्र द्वारा लिखित। मैं निशान सिंह। जैन धर्म का सिद्धांत और ज्ञान तत्व। जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्ति मार्ग का प्रधान स्थान है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जगत नाना प्रकार की व्याधियों और तृष्णाओं से विमुक्त होता है। प्रवृत्ति और वांछा में लिप्त व्यक्ति सुख और समृद्धि के लिए सर्वथा भोग और तृष्णा में व्यस्त रहता है। सांसारिक वस्तुओं को अधिकाधिक प्राप्त करने से भी उसे संतोष नहीं मिलता, उसकी वांछा और अभिलाषा तीव्र होती जाती है। अतः जगत के समस्त सुख दुख के कारण है। प्रवृत्ति का त्याग करने की निवृत्ति का अनुपालक ही वास्तविक और स्थायी सुख का मूल है। परिव्राजक की स्थिति में ही शांति प्राप्त होती है, जब मनुष्य समस्त सुखों पर भोग से अलग होकर निवृत्ति की ओर बढ़ता है। जैन ज्ञान तत्व के अंतर्गत कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सत और असत कर्म से ही बंधन और मुक्ति होती है। संसार में कर्म ही प्रधान है, ईश्वर का कोई निर्देश नहीं है। न तो वह जगत सृष्टा ही है, पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मों से होते हैं, ईश्वर से नहीं। इस प्रकार जैन धर्म के अंतर्गत ईश्वर को न मानकर मनुष्य के कर्म को ही प्रधानता दी गई है। उन्हें अपने कर्मों का स्वयं ही उत्तरदायी माना गया है। उनके सुख दुख उनके कर्म पर ही निर्भर करते हैं। जिनमें उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती, उसे अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होंगे। प्रायः 8 कर्मों के कारण जीव आबद्धता रहती है। पहला, ज्ञान वर्ण, आत्मा के ज्ञान को ढकने वाला। दूसरा, दर्शनावरण, आत्मा की दर्शन शक्ति को आवृत करने वाला। तीसरा, वेदना, सुख दुख के ज्ञान को अवरुद्ध करने वाला। चौथा, मोह, जीव को मोह के आवरण से ढकने वाला। पांचवा, आयु कर्म, मनुष्य की आयु को निश्चित करने वाला कर्म। छठा, नाम कर्म, व्यक्ति की परिस्थिति गति शरीर आदि को निर्धारित करने वाला कर्म। सातवां, गोत्र कर्म, मनुष्य की ऊंचाई नीचाई के स्तर को निश्चित करने वाला कर्म। तथा आठवां और अंतिम, अंतरकाय कर्म, सत्कर्मों में विघ्न डालने वाला कर्म। अतः समस्त प्राणी अपने कर्मों के अनुसार पृथक पृथक योनि में जन्म लेते और संसार के आवागमन जाल में फंसे रहते हैं, तथा अपने कर्मों में के फल भोगे बिना मनुष्य के लिए मुक्ति संभव नहीं है। कर्म फल भोगने के लिए ही उसका पुनर्जन्म होता है। अतः कर्म फल से मुक्त होना ही निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण ही मोक्ष है, जो कर्म फल की समाप्ति से ही संभव है। जैन धर्म की आचार मीमांसा से संबंध त्रिरत्न की व्याख्या की गई है, जो जीव को कर्म फल से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक माध्यम माना गया है। कर्मों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष की ओर प्रवृत्त करने वाले तत्व ही त्रिरत्न कहे गए। प्रथम, सम्यक सम्यक श्रद्धा। दूसरा, सम्यक ज्ञान। और तीसरा, सम्यक चरित्र आचरण नामक त्रिवित्तीय साधन ही त्रिरत्न है। सत में विश्वास और तदनुरूप आचार की सम्यक श्रद्धा है। सत का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सच्चरित्रता और सदाचरण ही पालन करते हुए जब जीव कलेशों और अशोभन कर्मों से निंदित रहित हो जाता है, तो वह सम्यक चरित्र कहा जाता है। अतः त्रिरत्न के पालन कर्म फल से विमुक्ति संभव मानी गई। संसार, समस्त संसार को असंख्य जीवों का वास अथवा आगार माना गया है, तथा समस्त पदार्थों की सचेतन और आत्मयुक्त प्रत्येक जीव में आत्मा और भौतिक तत्व दो अंश होते हैं। जब आत्मा और भौतिक तत्व से मुक्ति मिल जाती है, तब निर्वाण होता है, जो जीव का अभिष्ट है। आत्मा में विस्तारशीलता और सर्वव्यापकता है। वह अनंत है, असीम है और सत है। भौतिक तत्व असत है, बंधन है, जिसके कारण जीव को आत्मा से सद्रूप का दर्शन नहीं हो पाता। वह भौतिक तत्वों से अक्षत रहता है, जो असत है। इस प्रकार सत पर असत का प्रभाव रहता है। जो सत के प्रति सच्ची निष्ठा और बुद्धि होती है, तब असत का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही इंद्रियों के प्रभाव से रहित होकर अनाशक्त और उदासीन भाव से रहना ही सम्यक स्थिति है, जिससे जीव को न क्लेश का अनुभव होता है, न प्रसन्नता का। सम्यक श्रद्धा, दर्शन अथवा सही विश्वास के 8 अंग उल्लिखित हैं। प्रथम, निशंकित संदेह से दूर। दूसरा, निष्कांक्षित सांसारिक सुख की अभिलाषा को समाप्त करना। तीसरा, निर्विचिकित्सिक काया के मोह विराग से दूर रहना। चौथा, अमूढ़ दृष्टि भ्रामक मार्ग की ओर प्रवृत्त न होना। पांचवा, उपगुहन अधूरे विश्वासों से विचलित न होना। छठा, स्थितिकरण सह विश्वासों पर टिके रहना, सातवां वात्सल्य, सबके लिए प्रेम भाव रखना, और आठवां प्रभावना, जैन सिद्धांत की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना। इसके लिए तीन प्रकार की अज्ञानता मूर्खता से दूर रहने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम लोकमूढ़, उदाहरणार्थ नदी में स्नान करने से पाप मुक्ति का अंधविश्वास। दूसरा देवमूढ़, जैसे देवताओं की पूजा करने से पुण्य प्राप्त करने की अंध आशा। तथा तीसरा शांड मूढ़, उदाहरणार्थ साधु संत के धोखे में आना। पुल पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तप, शरीर के अहंकार आदि से दूर रहने के लिए कहा गया है। जैन सिद्धांत में सम्यक ज्ञान के पांच प्रकार बताए गए हैं। मति, इंद्रियों का अनुभूति। दूसरा अवधि। तीसरा श्रुति। चौथा मन पर्याय। पांचवा केवल। आत्मा का भौतिक तत्वों से उन्मुक्त होकर सत का आलोक प्राप्त करना ही सही ज्ञान है। सम्यक श्रद्धा की तरह इसके भी आठ अंग निर्दिष्ट किए गए हैं। प्रथम ग्रंथ, दूसरा अर्थ, तीसरा उभय, चौथा काल, पांचवा विनय, छठा सोपान, सातवां बहुमान, आठवां अनिन्हव। जैन धर्म में तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक काल में या प्रत्येक दशा में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता, वह भिन्न भिन्न होता है। अतः जैन सिद्धांत में तत्वों के ज्ञान का सात प्रकार निर्दिष्ट है। पहला है स्यात् अस्तित् किंचित् है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है और कहा नहीं जा सकता, सातवां है नहीं और कहा जा सकता है। किसी भी पदार्थ के विषय में ये सातों ज्ञान तत्व यथार्थ है तथा प्रत्येक पदार्थ को अनेकातिक सिद्ध करते हैं। जैन धर्म में इस दर्शन को श्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ की सापेक्ष सत्ता होती है, जिसे सत भी कहा जा सकता है, किंतु यह उसका एकांत स्वरूप नहीं होता, क्योंकि उसी के कारण उसे असत भी मानना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी पदार्थ एकांततः सत्य नहीं है, उसमें संदेश का भाव विद्यमान है, न वह सर्वथा सत है न असत। इसी प्रकार भिन्न भिन्न लोगों की आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, किंतु अगर देखा जाए तो पदार्थों और व्यक्तियों में भिन्नता आती है। एक ओर तो जैन धर्म का तर्क यह है कि भौतिक तत्व को समाप्त कर देना चाहिए, जिससे आत्मा तत्व मुखरित हो और सत का परिज्ञान हो, तथा दूसरी ओर वह आत्मा के विविध रूपों को मानता है। ऐसी स्थिति में अनेकात्मक तथा सिद्धांत त्रुटि रहित नहीं है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। जैन दार्शनिकों के अनुसार इस संसार का कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, सभी पदार्थ शाश्वत हैं। नष्ट प्रतीत होने का कारण यही है कि कभी कभी उनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु उनका मूलतः विनाश नहीं होता। उदाहरणार्थ स्वर्ण को लिया जा सकता है, स्वर्ण घट को तोड़कर मुकुट का निर्माण किया जा सकता है। मुकुट की उत्पत्ति और घट का नाश, दोनों ही स्थितियों में स्वर्ण की स्थिति स्पष्ट है। इससे स्वर्ण मुकुट चाहने वालों को हर्ष, स्वर्ण घट चाहने वालों को विषाद और मात्र स्वर्ण चाहने वालों को उदासीनता होना स्वाभाविक है। इस प्रकार द्रव्य अथवा पदार्थ का मूलतः विनाश नहीं होता, विनाश केवल परिवर्तन है। पदार्थ का मूल रूप तो इसके बाद भी बना रहता है। इस प्रकार जगत के द्रव्यों को छह प्रकार के बताए गए हैं। पहला जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा आकाश, चौथा धर्म, पांचवा अधर्म और छठा काल। प्रत्येक जीव काल संपन्न होता है, प्रत्येक जीव ज्ञान संपन्न होता है, किंतु आवरण के कारण उसका ज्ञान अछन्न रहता है। चैतन्य ही जीव का प्रधान लक्षण है, शरीर से भिन्न होकर भी चैतन्य ही उसका प्रमाण है। पुद्गल उन द्रव्यों के लिए व्यवहृत है जो प्रचय रूप में शरीर का निष्पादन करते हैं, तथा प्रचय से नष्ट होने पर स्वतः भी नष्ट हो जाते हैं। आकाश के लोकाकाश में द्रव्यों की सत्ता तथा अलोकाकाश में अलौकिकता है। धर्म जीव और पुद्गल को गति प्रदान करना तथा सहायता देना है। अधर्म से जीव की स्थिति होती है तथा इसके अभाव में जीवों की निरंतरता रहती है। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति काल से ही संभव है। किसी पदार्थ के परिवर्तित रूप को देखकर अज्ञान के कारण लोग उसकी उत्पत्ति और विनाश होना समझ लेते हैं, किंतु वास्तविक रूप में उसका मूल रूप तद्वत बना रहता है। एक अन्य दृष्टि से जैन सिद्धांत के अंतर्गत धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में अधिक आराम और सुखी जीवन बिताने को अनुचित बताया गया है। अतः जैन सिद्धांत 22 परिवह को सहन करने के लिए निर्देश देता है। शुद्ध पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नगण्य, अर्ति, स्त्री, चर्या, निषधा, सैर्य, आग्रोश, याचना, अलाभ, रोग, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। जैन सिद्धांत इस पर भी विचार करता है कि जीव में अजीव का प्रवेश अवरुद्ध करना है तथा जो प्रवेश हो चुका है उसे निकालना है। पहली क्रिया तो शवर कहा गया और दूसरी को निर्जरा। इन दोनों क्रियाओं का फल मोक्ष है। कर्म के माध्यम से ही मोक्ष संभव। अतः जैन सिद्धांत कुल कुशल कर्म को ही प्रोत्साहित करता है तथा अकुशल कर्म को ही निषिद्ध मानता है। ऐसी स्थिति में संवर और निर्जरा की क्रियाओं का संबंध अकुशल कर्म से है। जीव को जिस कर्म के आस्त्रव और बंधन मुक्त करना है वह अकुशल कर्म है। इस प्रकार मनुष्य को अकुशल कर्म से बचाना है और कुशल कर्म का अनुपालन करना है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। प्रथम, अहिंसा का पालन, जिसके अंतर्गत पांच समितियों का निर्देश किया गया है। पहला, ईर्ष्या समिति, ऐसे मार्ग से चलना जहां छोटे कीड़े मकोड़े भी न कुचले जा सकें। दूसरा, ईष्णा समिति, भोजन में किसी प्रकार भी छोटे कीड़ों की हिंसा न हो सके। तीसरा, भाषा समिति, कटु भाषा बोलकर किसी को हिंसा व कलेश न पहुंचाना। चतुर्थ, व्युत्सर्ग समिति, मलमूत्र ऐसे स्थान पर त्याग करना जहां कीटाणुओं की हिंसा न हो। तथा पांचवा, आदान अपेक्षा समिति, अपने सामानों का उपयोग करते समय भिक्षु द्वारा जीव वागुणों की हिंसा न होने देना। दूसरा, सत्य भाषण के अंतर्गत सर्वथा सत्य बोलने का निर्देश दिया गया है। पहला, अनुबिंब भाषी, सोच विचार कर बोलना। दूसरा, लोक परिजानती, लोभ होने पर चुप रहना। तीसरा, कोहं परिजानाती, क्रोध होने पर मौन रहना। चौथा, हासंग परिजानाती, हास्य में भी असत्य न बोलना। पांचवा, भयंग परिजानाती, भय होने पर भी असत्य न बोलना। तीसरा, अस्तेय, चोरी न करना, बिना किसी की स्वीकृति के बिना किसी की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पहला, बिना अनुमति के किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, बिना गुरु की आज्ञा के भिक्षा में प्राप्त भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा, आज्ञा प्राप्त होने पर ही किसी के घर में निवास करना चाहिए। चौथा, किसी के घर रहते हुए उसकी अनुमति के बिना भी कोई स्वीकृति के बिना उसे घर में निवास नहीं करना चाहिए। चतुर्थ, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत भिक्षु के लिए दिए गए निर्देश हैं। पहला, वह किसी स्त्री से संभाषण न करे। दूसरा, किसी स्त्री को न देखे। तीसरा, नारी संपर्क की भावना मन में न लाए। चौथा, शुद्ध और थोड़ा खाना खाए तथा अकेली रहने वाली स्त्री के घर न जाए। पांचवा, अपरिग्रह व्रत के अनुसार धन का इकट्ठा करना चाहिए। अपरिग्रह व्रत के अनुसार धन न इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि उससे मोह और आसक्ति का उदय होता है। गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अक्षुण व्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। पहला, अहिंसा व्रत। दूसरा, सत्याणु व्रत। तीसरा, अष्टयाणु व्रत। चौथा, ब्रह्मचर्याणु व्रत। और पांचवा, अपरिग्रहाणु व्रत। अनुव्रत के पालन में चार आधार दर्शित किए गए हैं। पहला, मैत्री। दूसरा, प्रामोद। तीसरा, कारुण्य। चौथा, मध्यस्थ। पंच महाव्रत और अनुव्रत में मांस, मदिरा और शहद पर प्रतिबंध लगाकर आठ मूल गुण निर्देशित किए गए। पंच महाव्रत अथवा अनुव्रत के साथ साथ आचरण के लिए सात सील व्रत वांछनीय माना गया है। सील व्रतों के दो विभाग किए गए हैं, पहला गुणव्रत और दूसरा शिक्षा व्रत। गुणव्रत तीन प्रकार के बताए गए हैं, क दिग्व्रत, ख देशव्रत, ग अनर्थ दंड व्रत। शिक्षा व्रत के चार प्रकार हुए, क शाम्यिक, ख शोषधोपवास, ग उपभोग प्रतिभोग परिणाम घ अतिथि संविधान। जैन धर्म में शरीर को कष्ट और कलेश देकर साधना का कार्य दर्शित किया गया है। तपश्चर्या, व्रत, अनशन, उपासना आदि का पालन परिव्राजक के लिए वांछनीय है। वर्धमान महावीर ने स्वयं अपने शरीर को कठिन तपस्या से तपाया था, इसलिए वे दुर्लभ सिद्धि अर्जित कर सके। इसके साथ ही महावीर स्वामी निर्वस्त्र और नग्नता के समर्थक थे। भिक्षु के संभाव को ध्यान में रखकर उन्होंने आशक्ति, लज्जा आदि से उसे ऊपर माना तथा अपने अनुयायियों को इसका अनुगमन करने का निर्देश किया। जैन धर्म का आचार तत्व मन और कार्य शुद्धि पर विशेष बल देना है, इसलिए ब्राह्मण धर्म के यज्ञ और कर्मकांड का इस धर्म में विरोध है। ब्रह्म शुद्धि के स्थान पर अंतःशुद्धि पर अधिक बल दिया गया है तथा सच चरित्रता और सदाचरण उसके प्रधान आधार माने गए हैं। कर्म को महान महत्ता प्रदान करते हुए कर्महीन जन्मना ब्राह्मण को निम्न और निम्न स्वीकार किया गया है। कर्म से ही कोई ऊंचा और नीचा होता है। सत्कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही उच्च है, चाहे वह जन्म से निम्नतम वर्ग का ही क्यों न हो। सत्कर्म के लिए इन 18 पापों से मुक्त होना आवश्यक है। पहला प्राणातिपात, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा मैथुन, पांचवा द्रव्य मूर्छा, छठा ग्रोथ, सातवां मान, आठवां माया, नौवां लोभ, दसवां राग, ग्यारह द्वेष, बारह कलह, तेरह दोषारोपण, चौदह चुगली, पंद्रह असंयम में रति और संयम में अरति, सोलह पर परिवाद, सत्रह माया मृषा तथा अठारह मिथ्या दर्शन रूपी शल्य। इन पापों से मुक्त होने पर जीव संभाव में आता तथा निर्वाण मार्ग की ओर अग्रसर होता है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य निर्वाण है। यह सत्कर्म और सन्मार्ग से ही संभव है। भौतिक तत्वों के विनाश और कर्म फल से मुक्ति ही जीव को निर्वाण की ओर प्रेरित करती है। निर्वाण की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि बिना निवृत्ति के सत्कर्म का अनुपालन नहीं हो सकता और बिना सत्कर्म के जीव को पूर्व कर्म फल से मुक्ति नहीं मिल सकती। सत्कर्म ज्ञान से होता है, अतः ज्ञान की उपलब्धि कैवल्य प्राप्ति है, जो निर्वाण मार्ग की प्रधान प्रेरक है। महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ की स्थापना हो चुकी थी, जिसके सदस्य चार श्रेणियों में विभाजित थे। प्रथम भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा श्रावक और चौथा श्रावकी। प्रथम दो वर्ग संसार त्याग करने वाले परिव्राजकों के थे और अंतिम दो वर्ग गृहस्थों के। वर्धमान महावीर के अनुसार मनुष्यों के तीन प्रकार हैं। प्रथम अव्रती, जो सांसारिक मोह माया में लिप्त रहते हैं तथा उससे विलग होने का उनका मन नहीं होता। दूसरा अनुव्रती, जो आंशिक रूप से हिंसा आदि दुष्कर्मों से अलग रहते हैं तथा तीसरा सर्वव्रती, जो पूर्णतः अनाशक्त भाव से रहते हुए सच्चरित्रता और सत्कर्म का अनुपालन करते हैं। जैन संघ में रहने वाले श्रमणों के लिए पंच महाव्रत का अनुपालन करना आवश्यक था। ये वर्षा ऋतु के अतिरिक्त सभी ऋतुओं में सर्वदा भ्रमण किया करते थे। भिक्षा के माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते थे। मन, वचन और कर्म से अपना आचरण शुद्ध रखते थे। इंद्रिय सुख का परित्याग करते थे। उनके भ्रमण में वर्ण, पर्वत तथा निर्जन स्थल असुरक्षित थे। चोर डकैतों के कारण श्रमणों का ऐसा स्थानों पर जाना उनके लिए विपत्तिपूर्ण था। जैन भिक्षुओं के लिए देवस्थान, सभा मंडप,